राधिका के पहने हुए कपड़े अब उसके पूरे शरीर पर चिपक चुके थे, जिसमें वो बेहद आकर्षक और मोहक लग रही थी। फिलहाल देर न करते हुए सुमित ने जल्दी ही पूरी तरह से राधिका को अपने प्यार में मदहोश करना शुरू कर दिया था। राधिका, जो कि थोड़ी देर पहले सुमित से पूरी तरह से नाराज थी, वो अपनी नाराजगी अभी और दिखाना चाहती थी, लेकिन अब तो वो सुमित के प्यार में पूरी तरह से मदहोश हो चुकी थी और बेताबी से वो उसे पाना चाहती थी। जल्दी ही बाथरूम में ही दोनों का वाइल्ड रोमांस शुरू हो चुका था और राधिका पूरी तरह से उसके प्यार में डूब चुकी थी। वहीं दूसरी ओर हमारा तीसरा कपल यानी ध्रुव, जो कि सुमित और आकाश को देखकर समझ चुका था कि वे दोनों इस वक्त जरूर अपनी अपनी बीवियों से मिलने के लिए जा रहे हैं, आहान के पूछने पर बहाना बनाकर सिगरेट पीने की बात कहकर सीधा ध्रुव अपने कमरे में आ गया था। लेकिन उसने देखा कि वंशिका वहां नहीं थी। तब ध्रुव जल्दी से बाहर की ओर जाने लगा वंशिका को देखने के लिए। जल्दी ही उसे अपने ठीक सामने से वंशिका अपने कमरे की ओर आती हुई दिखाई दी। अब वंशिका को अपने कमरे की ओर आते देखकर ध्रुव जल्दी से कमरे के अंदर गया और दरवाजे के पीछे छुप गया। वहीं वंशिका, जो कि जल्दी से फ्रेश होकर फटाफट से एंटीडोट बनाने के लिए कुछ रिसर्च करना चाहती थी, साथ ही अपने प्रोफेसर यानी बचपन से लेकर आज तक अगर परिवार के नाम पर उसकी जिंदगी में कोई था तो वो उसके प्रोफेसर थे, वो उनसे मिलने के बारे में सोच रही थी। वही प्रोफेसर हमेशा से ही वंशिका को गाइड करते थे, वरना इतनी छोटी उम्र में इस बड़ी दुनिया में सर्वाइव करना पूरी तरह मुश्किल हो जाता। कमाल की बात तो ये थी कि वो ध्रुव से इस बारे में बात कर चुकी थी, लेकिन असल में उसके गुरुजी कितने बड़े इंटेलिजेंट और जीनियस इंसान थे, इसके बारे में वंशिका से बेहतर कोई नहीं जानता था। फिलहाल उसने सोचा कि सबसे पहले वो फ्रेश हो जाए, उसके बाद वो फटाफट से प्रोफेसर से मिलकर वायरस के बारे में डिस्कस करेगी, क्योंकि ध्रुव पहले ही वंशिका के हाथों में सारी रिपोर्ट्स थमा चुका था। वंशिका ने जैसे ही अपने कमरे में कदम रखा, तुरंत ध्रुव ने उसका हाथ पकड़कर उसे सीधा अपनी ओर खींच लिया। एक पल के लिए वंशिका के मुंह से चीख निकल गई, लेकिन ध्रुव को अपने सामने देखकर उसके चेहरे पर मुस्कुराहट खिल गई। वंशिका को सीने से लगाकर ध्रुव ने तुरंत दरवाजा अंदर से लॉक कर दिया और उसे कसकर गले से लगा लिया। वंशिका ने भी ध्रुव के सीने पर अपना सिर रख दिया, क्योंकि वो खुद भी ध्रुव से मिलने के लिए बेताब थी। जब से घर में इतना ड्रामा हुआ था, तब से दोनों ने ढंग से बात तक नहीं की थी, लेकिन अब उन्हें हर चीज की टाइमिंग और हालात का ख्याल रखना था। वंशिका ज्यादा दिन ध्रुव से अलग नहीं रहना चाहती थी, इसीलिए वो फटाफट से एंटीडोट बनाकर अरमान को भी ठीक करना चाहती थी। फिलहाल जब वे दोनों एक दूसरे को कसकर गले लगाए हुए थे, ठीक उसी वक्त आहान ने ध्रुव और वंशिका को भी खिड़की से देख लिया और फटाफट वहां से भाग निकला। वहीं ध्रुव ने बिना कुछ कहे अचानक वंशिका को गोल गोल घुमाना शुरू कर दिया। वंशिका मुस्कुराने लगी और उसे हंसते हुए देखकर ध्रुव बड़े ही फिल्मी स्टाइल से आगे बढ़ा और उसे गोद में उठाकर गोल गोल घुमाने लगा। वंशिका की हंसी पूरे कमरे में गूंजने लगी। वंशिका को हंसते हुए देखकर ध्रुव को भी एक अजीब सा सुकून मिला और उसने आगे बढ़कर तुरंत वंशिका को अपने प्यार की गिरफ्त में ले लिया और पूरी तरह से उसे प्यार करने लगा। वहीं इन तीनों कपल्स के रोमांस का नज़ारा आहान अपनी आंखों से देख चुका था और इस वक्त उसके दिल में भी एक अजीब सी आग लग चुकी थी। साथ ही साथ उसे ध्रुव पर सबसे ज्यादा गुस्सा आ रहा था कि आखिरकार ये ध्रुव इतना बदमाश कैसे हो सकता है। क्या वो उसे बता नहीं सकता था कि वे लोग अपनी अपनी बीवियों के साथ रोमांस करने के लिए जा रहे हैं? और रोमांस करने के मामले में आहान सिंघानिया किसी से कम है क्या? उसे रोमांस करने का कोई हक नहीं है? कहीं ना कहीं आहान को बार बार यही लग रहा था कि सभी लोग अपनी अपनी बीवियों के साथ रोमांस कर रहे हैं और उसे अरमान के पास अकेला छोड़ दिया। फिर उसने सोचा कि उसे भी अब देर नहीं करनी चाहिए और फटाफट से जाकर रौनक के साथ कुछ वक्त गुजारना चाहिए, और फिर पता नहीं अरमान भाई कब तक जाग जाए और कब उसे उसकी रौनक से दूर कर दे। इसी सोच के साथ आहान ने बिना देरी किए सीधा अपने कमरे में आया। जब उसने कमरे में देखा तो उसे रौनक कहीं नहीं दिखाई दी। फिलहाल फटाफट उसने अपने कपड़े चेंज किए। कपड़े बदलने के बाद वो सीधा रौनक को ढूंढने के लिए निकल पड़ा। आहान ने सोचा आखिर उसकी हवा हवाई इस वक्त कहाँ हो सकती है। तभी उसके दिमाग की बत्ती जली और वो समझ गया कि जरूर वो किचन में कुछ ना कुछ खा रही होगी, वरना उसकी रौनक और कहाँ जा सकती है। ये सोचकर फटाफट वो किचन में गया, लेकिन उसने देखा कि रौनक वहाँ भी नहीं है, तो वो और हैरान हो गया। पूरा हॉल खाली था और रश्मि, राधिका, वंशिका तो अपने अपने पतियों के साथ रोमांस करने में बिजी थी, तो फिर उसकी रौनक अकेली कहाँ जा सकती है। तभी उसे नानी माँ के कमरे से कुछ आवाजें सुनाई देने लगी। तब वो समझ गया कि जरूर रौनक नानी माँ के साथ है। ये सोचकर वो नानी माँ के कमरे में चला गया। जैसे ही वो वहाँ पहुँचा, उसने देखा कि रौनक नानी माँ का हाथ थाम कर बैठी हुई है, क्योंकि आज जो कुछ भी हुआ उससे नानी माँ को काफी दुख पहुँचा था, लेकिन फिलहाल वो शांत भी हो गई थी। उन्हें पता था कि अरमान ने जो कुछ भी कहा और जो कुछ हुआ वो अनएक्सपेक्टेड था, क्योंकि अरमान की हालत ही ऐसी है कि उसमें हम किसी को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते हैं। अब आहान रौनक को बड़े ध्यान से देखने लगा, जब से रौनक प्रेग्नेंट हुई थी उसने ढीले ढाले फ्रॉक सूट पहनना शुरू कर दिया था जिसमें उसका बेबी बंप बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता था, लेकिन वो एकदम गोरी चिट्टी और गोलमटोल हो गई थी। आज रौनक को अलग ही नजरिए से देखकर आहान को उस पर अलग तरह का प्यार आ रहा था। अब देर न करते हुए वो नानी माँ और रौनक के ठीक सामने जाकर बैठ गया और फिर रौनक को अपनी गहरी नजरों से देखने लगा। वहीं रौनक कुछ पल के लिए उसे देखकर हैरान हो गई। उसने मन में सोचा, अब मेरे हीरो को क्या हुआ, ये इतनी अजीब नजरों से मुझे क्यों घूरकर देख रहा है। वो समझ गई थी कि शायद आहान उससे कुछ कहना चाहता है, लेकिन तभी आहान ने आंखों ही आंखों में रौनक को चुपके से कुछ इशारा किया कि वो उसके साथ कमरे में चले, पर रौनक को उसके इशारे समझ नहीं आए। वहीं आहान ने अपने होंठ भींचे और आंखें मटकाकर बार बार रौनक को इशारा करता रहा कि वो कमरे में चले, लेकिन रौनक फिर भी कुछ समझ नहीं पाई। तंग आकर आहान ने अपने सिर पर हाथ मार लिया। उसने मन में सोचा, ये लड़की भी ना, क्या इसे अपने पति की अनकही बातें सुननी या समझनी नहीं आती। फिलहाल उसने गहरी सांस ली और तुरंत रौनक का हाथ पकड़कर फट से बोला, मुझे तुमसे कुछ जरूरी काम है, मेरे साथ चलो। तब रौनक आहान को आंख दिखाते हुए नाराजगी से बोली, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है कि नानी माँ कितनी ज्यादा उदास है, तो भला मैं अपनी नानी माँ को इस तरह से उदास छोड़कर तुम्हारे साथ ऐसे कैसे आ सकती हूँ। तुम जाओ, जाकर अपना काम खुद कर लो, मुझे तुम्हारा कोई काम नहीं करना। रौनक के टालने वाले जवाब ने आहान का मूड खराब कर दिया और एकदम से उसका मुंह बन गया। वो अंदर ही अंदर खींच कर रह गया और नाखुश होकर सोचने लगा, इतनी शक्ति इस पूरी दुनिया में सिर्फ बीवियों के पास ही होती है कि वो आदमी के अच्छे खासे मूड को एक मिनट में बेकार और बिगाड़ सकती हैं। लेकिन फिलहाल आहान के सिर पर तो रोमांस करने का जुनून सवार था, क्योंकि वो ध्रुव, आकाश और सुमित को देखकर आया था।
तो उसने गहरी सांस ली और हिम्मत नहीं हारी और नानी माँ को देखकर थोड़ा सीरियस एक्सप्रेशन से बोला, नानी माँ, मुझे लगता है आपको थोड़ी देर आराम करना चाहिए, और वैसे भी आप परेशान मत होइए, अरमान भाई बिल्कुल ठीक हैं, और हम पिछले 2 सालों की बातें अरमान भाई से भले ही छुपा सकते हैं, लेकिन हम इतनी लड़कियों को, इतने कैरेक्टर्स को कैसे छुपा सकते हैं, थोड़ा बहुत तो अरमान भाई को अंदाज़ा लग ही जाता, और वैसे भी अरमान भाई एकदम इमोशनल लेस और हार्टलेस हैं, तो आप ये मत सोचिएगा कि उनको किसी बात का बुरा लगेगा। हाँ, अगर सोचना है तो सिर्फ इस बात के बारे में सोचिएगा कि अरमान भाई को किसी की कोई गलती नजर ना आए, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो अरमान भाई फिर उस शख्स के साथ क्या करेंगे उसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता। तो इसीलिए अरमान भाई पर ये वक्त तरस खाने का नहीं, बल्कि उनसे डरने का है, डरने का, आहान ने नानी माँ को डराते हुए कहा। वहीं नानी माँ आहान की बातें सुनकर पूरी तरह से घबरा गईं और उन्होंने एकदम से सोचा, हाँ, भले ही उनके ऊपर हमारे गांव वाले पिशाच का साया ना हो, लेकिन दामाद जी के ऊपर कुछ ना कुछ तो ज़रूर है जो इस तरह से वो घर के सभी लोगों को डराते फिरते हैं। फिलहाल उन्होंने आहान को कुछ नहीं कहा और शांत स्वर में बोली, वैसे हमारी आँखें भारी हो रही हैं, हम थोड़ी देर सोना चाहते हैं, इसीलिए आहान बिटवा, तुम एक काम करो, रौनक बिटिया को कमरे में ले जाओ और उसे आराम करने दो, और हाँ, वो जो डोर दिख रही ना, वो डिब्बा जो है वहाँ पर एक तेल पड़ा हुआ है, वो तेल हमने खुद अपने हाथों से बनाया है, रौनक बिटिया के लिए बहुत अच्छा रहेगा, तो उस तेल से तुम उसके पैरों के तलवों पर मसाज कर देना, इससे उसे ज़्यादा दर्द नहीं होगा। इतना बोलकर नानी माँ जल्दी ही बेड पर लेट गईं। वहीं आहान रौनक को संभालते हुए कमरे में ले आया और रौनक बेड पर पैर फैलाकर बैठ गई और आहान को देखकर बोली, घुटनों के पास से तेल अच्छी तरह लगाना, क्योंकि ना मुझे घुटनों में भी आजकल दर्द होने लगा है। रौनक ने जैसे ही पप्पी सा चेहरा बनाकर ये कहा, आहान तुरंत ही रौनक को तेल मसाज देने लगा था। बड़े प्यार से वो उसे ट्रीट कर रहा था, लेकिन वो परेशान होकर ये भी सोचने लगा था कि अगर अरमान भाई जाग गए तो उसका रोमांस पूरी तरह से इनकम्प्लीट रह जाएगा, तब वो क्या करेगा। नहीं नहीं, थोड़ी सी देर तेल मसाज करने के बाद वो फटाफट से उठा और रौनक से धीमी आवाज में बोला, तुम एक काम करो, थोड़ी देर के लिए मेरी गोद में लेट जाओ। अब जैसे ही आहान ये कहा, वैसे ही रौनक नासमझी से उसे देखने लगी और एकदम से बोली, तुम्हारी गोद में लेट जाऊं, मतलब क्या कहना चाहते हो तुम, और मैं तुम्हारी पत्नी हूं, यहां इतना बड़ा बेड पड़ा हुआ है, मैं उस पर भी तो लेट सकती हूं। आहान ने चिढ़कर सोचा, क्या करूं, किस तरह से रोमांस करूं, ये तो गोद में लेटने को भी मना कर रही है। अचानक वो फट से बोला, तो तुम एक काम करो, मुझे अपनी बाहों में ले लो। जैसे ही आहान ने ये कहा तो ये सुनकर वैसे ही रौनक कंफ्यूज्ड होकर आहान को उलझी हुई नजरों से देखने लगी, फिर बेपरवाही से बोली, अरे छछुंदर, कहना क्या चाहते हो, सीधे सीधे बता क्यों नहीं रहे, इस तरह बातें गोल गोल क्यों घुमा रहे हो। अब तो रौनक के मुंह से छछुंदर सुनकर आहान का पारा चढ़ गया। वो तुरंत उसके पास जाकर बेहद दिलकशी से उसके बालों को खींचकर उसके होंठों के करीब जाकर बोला, मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि मैं अपनी बीवी के साथ रोमांस करना चाहता हूँ, तेल मसाज नहीं करना चाहता, पर हाँ, अगर मेरी बीवी चाहेंगे तो मैं उसके पूरे बॉडी पर तेल अप्लाई कर सकता हूँ। अब जैसे ही आहान रौनक के करीब होकर अपनी गर्म सांसें उसके ऊपर छोड़ते हुए बोला, तो ये सुनते ही रौनक के गाल अचानक से टमाटर की तरह लाल होने लगे। अब जाकर रौनक आहान की बातों का मतलब समझी और वो एकदम से मुस्कुरा दी। रौनक को शर्माते हुए देखकर आहान का दिल खुशी से उछलने लगा। देर ना करते हुए उसने उसके खूबसूरत गुलाबी होठों को अपने होठों के कब्जे में ले लिया और बड़ी ही केयरफुली उससे प्यार करने लगा। वहीं दूसरी ओर आस्था ने आज अपनी माँ की साड़ी पहनी थी जिसमें वो बेहद खूबसूरत लग रही थी। अविनाश तो खोया खोया उसे देखे जा रहा था। वहीं दादाजी भी मुस्कुरा उठे। कितने ही दिनों के बाद उन्होंने किसी लड़की को इंडियन वेयर के देखा था। वैसे आस्था ने पहले भी अनारकली सूट पहना था, लेकिन जो लोग आस्था का साड़ी में निकलकर सामने आ रहा था वो किसी में नहीं था। आस्था को देखते ही दिग्विजय सिंह जी खुद को रोक नहीं पाए और व्हीलचेयर से खड़े होने की कोशिश करने लगे। वो आस्था को अपने पास बुलाना चाहते थे, उसकी नजरें उतारना चाहते थे। आज आस्था बहुत प्यारी लग रही थी। एंजल भी अविनाश को गौर से देख रही थी। अविनाश अपने होठों पर मुस्कान लिए अपनी प्यारी बहन को प्यार से देख रहा था। फिर उसने एक नोटों की गड्डी से निकालकर आस्था की नजरें उतारकर उस नोटों की गड्डी को अपने घर के नौकरों को बांट दिए। वहीं एंजल, जो कि वेस्टर्न ड्रेस में वहां मौजूद थी, अब ये नजारा देखकर वो थोड़ा सा मायूस हो गई थी, क्योंकि आज से पहले अविनाश ने उसके साथ ऐसा कुछ नहीं किया था। अब अविनाश को इस तरह से आस्था की नजरें उतारते हुए देखकर एंजल के दिल में कुछ अजीब सी हलचल होने लगी और वो उदास होकर तुरंत ही अपने कमरे में चली गई। आगे की स्टोरी जानने के लिए बने रहिए दोस्तों।